जब आकाश दादाजी के साथ अनाथ आश्रम गया था, वहीं पर रश्मि से उसकी दूसरी मुलाकात हुई थी। दादाजी रश्मि को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन आकाश पहली बार दादाजी के साथ वहां आया था। आकाश को दादाजी के साथ देखकर रश्मि बहुत खुश हुई थी, और जब उन्हें अकेले में थोड़ा सा समय मिला, तब रश्मि ने एक बार फिर आकाश को शर्माते हुए प्रपोज कर दिया था। आकाश का दिमाग पहले ही खराब हो रखा था जब रश्मि ने उसे बीच सड़क पर प्रपोज किया था, और अब अचानक से दादाजी के साथ आने पर रश्मि ने एक बार फिर उसे प्रपोज कर दिया। अब तो आकाश का सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि उसे इस तरह की चिपकू लड़कियां बेहद जहर लगती थीं जो उसके आसपास भटकती रहती थीं। उसने रश्मि को भी उन लड़कियों में ही समझा था, और जल्दी ही डॉक्टर रश्मि, जो उस वक्त आकाश के साथ आश्रम के दूसरे छोर पर अकेली थी, मौका देखकर आकाश के गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया था। लेकिन अब तो एंग्री यंग मैन आकाश का गुस्सा बढ़ चुका था, और उसने रश्मि को अनाथ आश्रम की ही दीवार से सटा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझे आई लव यू कहने की? हाँ, मुझे नफरत है लड़कियों से, आगे से मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। और तुमने आज जो ये मेरे साथ हरकत की है, आकाश ने अपने गाल की ओर इशारा करते हुए कहा था जहाँ रश्मि ने उसे किस किया था। मैं अच्छी तरह से तुम जैसी लड़कियों की इंटेंशन समझता हूँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुनना, बार बार आई लव यू कहकर मेरे पीछे मत घूमना। आकाश ने सीधे और सपाट लहजे में रश्मि के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। तब रश्मि रोते हुए बोली, आकाश तुम्हें क्या हो गया है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें कब से प्यार करती हूँ। हम लोग फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तब से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। फ्लैशबैक, असल में आकाश, अरमान, रश्मि, साथ ही साथ आहान और ध्रुव एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। दादाजी ने रश्मि की पढ़ाई का जिम्मा बचपन से ही उठा रखा था, और तब से रश्मि आकाश को पसंद करती थी। हालांकि जवान होने के बाद वो आकाश से बहुत कम ही मिली थी, लेकिन फिर भी उसने आकाश के बारे में पूरी डिटेल्स और पूरी जानकारी निकाल ली थी। आकाश के सभी फोटोज वो अपनी डायरी में जमा करके रखा करती थी। उसके बाद आकाश विदेश चला गया था, और विदेश जाने के बाद रश्मि को आकाश पहली बार उस सड़क के बीचों बीच मिला था, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो आकाश से मिलकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आकाश उसका बचपन का प्यार था। बचपन से ही रश्मि उसे बेहद प्यार करती थी। फ्लैशबैक एंड। क्योंकि आकाश उसका बचपन का प्यार था, और जब वो आकाश से पहले दिन स्कूटी से टकराई थी, उसी वक्त उसने उसे आई लव यू बोल दिया था, क्योंकि उसे सब्र नहीं हुआ कि वो पहले आकाश के मन की बात तो जान ले, फिर बाद में उसे प्रपोज करे। आकाश रश्मि की बातें सुनकर इरिटेट हो चुका था जब रश्मि ने उसे बचपन वाली बातें बताईं और उसे ये बताया कि वो बचपन से उसे प्यार करती है। तब आकाश को भी रश्मि याद आ गई थी। आकाश को भी अच्छी तरह से याद था जब वो क्लासरूम में बैठा करता था, एक दो चोटी वाली क्यूट सी लड़की हमेशा उसे परेशान किया करती थी, लेकिन आकाश ने बचपन में भी उसे कभी भाव नहीं दिया था। अभी रश्मि को अपनी आंखों के सामने देखकर आकाश हैरान था, लेकिन उसने उसी दिन उसके मुंह पर साफ साफ उसके प्यार को इनकार कर दिया था और बोल दिया कि वो उससे प्यार नहीं करता है और वो आज के बाद उसके आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। उस दिन के बाद से रश्मि का दिल पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसने कसम खाई थी कि अगर उसकी जिंदगी में उसका बचपन का प्यार नहीं तो वो और शादी नहीं करेगी। इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में गुजारने का फैसला कर लिया था और एक बड़ी डॉक्टर बन बैठी थी। लेकिन जब उस दिन हॉस्पिटल में उसने आकाश को देखा, तब एक बार फिर उसका छुपा हुआ प्यार उमड़ आया था और उसने आकाश को चाटा मार दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये लगा था कि शायद आकाश आस्था का पति है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद उसे अफसोस हुआ था, लेकिन आकाश के लिए उसकी मोहब्बत और गहरी हो गई थी। लेकिन जब बार बार आकाश ने रश्मि की मोहब्बत की बेइज्जती की, तो अब रश्मि धीरे धीरे पीछे हटने लगी थी, क्योंकि उसे अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा प्यारी थी। प्रेजेंट, वहीं आकाश का दिल अभी पूरी तरह से बेचैन था। उस वक्त सुनसान सड़क पर वो खुद के इमोशन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब से सुमित की जिंदगी में हादसा हुआ था, तब से आकाश ने भी अपने दिल के दरवाजों को अच्छी तरह से बंद कर लिया था, और उसने सोच लिया था कि वो भी कभी जिंदगी में शादी नहीं करेगा। वेल, अब आकाश अपने पिछले बीते दिनों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक पीछे से किसी कार के हॉर्न की आवाज आई थी, क्योंकि आकाश की कार बीच रास्ते पर सड़क पर खड़ी थी। तब आकाश कार की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आया। तब भी आकाश को अपने सामने से कार नहीं हटाता हुआ देखकर उस गाड़ी में बैठी एक लड़की बड़े ही स्टाइल से चलते हुए आकाश के करीब आई। उस लड़की ने एक रेड कलर की शर्ट स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो हॉट और बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने आकाश के कंधे पर हाथ रखा था। अभी आकाश ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। लेकिन इससे पहले कि आकाश उसे कुछ बोलता, तभी उस लड़की के ठीक बराबर में आकर एक लंबा चौड़ा और हैंडसम सा आदमी खड़ा हो गया था। उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओ डार्लिंग, तुम्हें कार से निकलने की क्या जरूरत थी? मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ जाकर कार में बैठो। ऐसा कहकर उसने उस लड़की को कार में बैठने के लिए कह दिया था। लेकिन आकाश उस आदमी और उस लड़की दोनों को ही देखकर पूरी तरह से चौंक गया था। तब वो आदमी आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे मिस्टर, ये बीच सड़क पर आपने कार क्यों की है? हमें रास्ता दीजिए और अपनी कार हटाइए। ये बात उस आदमी ने बड़े ही पावरफुल वॉइस में आकाश को कार हटाने के लिए कही थी। तब आकाश ने बिना कोई सवाल किए जल्दी ही अपनी कार हटा दी थी और आकाश की कार के ठीक बराबर में से उस लड़की और लड़के की कार निकल गई थी और वो लड़की गहरी और इंटेंस नजरों से आकाश की ओर ही देख रही थी। आकाश सोचने लगा, ये लोग यहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ये यहाँ क्या करने आए हैं? अब इन लोगों का क्या करने का इरादा है? इनका पता लगाना होगा। खुद से सवाल जवाब करने के बाद आकाश ने जल्दी से देव को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने में लगा दिया और फटाफट से उसके साथी और उस लड़की के यहाँ आने की इन्फॉर्मेशन पता लगवाने के लिए बोल दिया था। वो लड़की और आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड और मारिया थे। डेविड वही शूटर था जो वसुंधरा जी के कहने पर अरमान की जान लेने के लिए इंडिया आया है और डेविड के साथ मारिया को देखकर आकाश एक ही पल में उसे पहचान गया था कि मारिया कौन है। वेल, देव को इन्फॉर्मेशन निकालने को कहकर आकाश अपनी कार सिंघानिया मेंशन की ओर लेकर चल दिया। वहीं आस्था भले ही रश्मि और बाकी सब परिवार वालों के सामने खुद को कितना ही मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असलियत में क्या गुजर रहा था वो सब अच्छी तरह से जानते थे। अरमान का उसे गंदे तरीके से छूना, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करना उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। आस्था अचानक से बाथरूम में गई। वहां जाकर उसने खुद को आईने में देखा और लगातार 2 से 3 चाटे उसने खुद के मुंह पर ही दे मारे थे। उस वक्त आस्था एकदम पागलों जैसा बिहेवियर कर रही थी क्योंकि ये हादसा आस्था की जिंदगी में ना भूलने वाला हादसा बन चुका था जिससे उसे हर हाल में लड़ना था। वो चाहे अपने आप को कितनी ही ताकत दे, कितनी ही हिम्मत देने की कोशिश करे, लेकिन इतनी आसानी से इस हादसे को नहीं भूलने वाली थी।
और कहीं ना कहीं उससे इस बात का भी डर था कि अगर अरमान ने एक बार फिर उसके साथ इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो शायद वो इमोशनल होकर अपनी जान ही ना ले ले। वेल, काफी देर तक रोने के बाद आस्था बाहर आई थी। इस वक्त वो उस कमरे में थी जिस कमरे में दादाजी ने उसे शादी की पहली रात गेस्ट रूम में ठहराया था। उस कमरे में उसके नानी माँ का दिया हुआ उसका कुछ पुराना सामान था, साथ ही साथ उसके कुछ कपड़े थे। कितनी देर तक आस्था उन कपड़ों को देखकर, अपने सामान को देखकर रोती रही थी और उन सवालों के बीच में एक बड़ी ही प्यारी सी खूबसूरत सी चेन पेंडेंट, उसमें हल्के नीले रंग का एक स्टोन लगा हुआ था। आस्था को कोई आइडिया नहीं था कि ये किस तरह का स्टोन है और ये पेंडेंट चेन ऐसा क्यों बनाया गया है। उस वक्त उस पेंडेंट को अपने हाथों में लेकर आस्था फूट कर रोती थी। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि वो पेंडेंट उसके माता पिता का दिया हुआ उसे आखिरी तोहफा था। वेल, वहीं दूसरी ओर आस्था खुद को अकेला पाकर अपने आप को समेटती रही। वहीं रश्मि ने ऑलमोस्ट अपने बैग पैक कर लिए थे और बैग पैक करने के बाद वो चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई थी। ठीक उसी वक्त आकाश सिंघानिया मेंशन में आ गया था। उसका दिल किया कि एक बार वो आस्था से मिल लें क्योंकि उसे तो यही पता था कि आस्था रश्मि वाले कमरे में है, तो इसीलिए वो उस कमरे की ओर चला गया। और जैसे ही उसने गेट खटखटाया तो अंदर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई। लेकिन आकाश एक बार आस्था से मिलना चाहता था, अपनी तसल्ली करना चाहता था कि आस्था ठीक है या नहीं है, क्योंकि अरमान की जो हालत थी वो आज उसे देखने के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अरमान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और जब भी अरमान से कोई गलती हो जाया करती थी तो वो खुद को इसी तरह से सजा दिया करता था। वो आकाश जैसे ही उस कमरे के अंदर गया तो वो हैरान हो गया। वहां पर उसे साइड में रश्मि के बैग्स बैग दिखाई दिए थे। आकाश बैग्स देखते ही समझ गया था कि ये बैग्स रश्मि के हैं क्योंकि जिस दिन रश्मि आई थी उसके हाथ में वही ब्लैक कलर का बैग था। तब आकाश को दिल ही दिल में थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई क्योंकि आकाश रश्मि से प्यार तो करता था लेकिन प्यार एक्सेप्ट करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही उसमें नहीं थी और ना ही वो प्यार के चक्कर में पड़ना चाहता था। इसका भी एक खास कारण था जो आगे आने वाले कुछ चैप्टर में पता चलेगा। वेल, अब जैसे ही आकाश वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा उसी वक्त तुरंत रश्मि बाथरूम से बाहर आई थी। उसने आज फिर अपनी नाइटी पहनी थी जो कि वो सोने के लिए पहना करती थी। उस वक्त रश्मि पर ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आकाश की नजरें जाकर रश्मि पर ठहर गई थीं। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें ऐसे दिखाई दे रही थीं मानो कि सुबह के वक्त हरी हरी घास पर ओस की बूंद हो। आकाश रश्मि को कितनी ही देर इसी तरह से निहारता रहा जबकि रश्मि उस वक्त अपने बालों को अच्छी तरह से पोंछ रही थी, साथ ही साथ अपने हाथ मुंह पर जो पानी था उसे क्लीन कर रही थी। तभी उसकी नजर अचानक ही आकाश पर पड़ी थी और आकाश को अपने सामने देखकर रश्मि हैरान हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। तभी रश्मि ने उस खामोशी को तोड़ते हुए आकाश की ओर देखकर बोली, मिस्टर आकाश मल्होत्रा, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि मैं कल यहां से जा रही हूं और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आज के बाद आपकी आंखों के सामने ना आऊं। तो अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे जल्द से जल्द इस रात को काटना है और अगले दिन यहां से जाना है, तो प्लीज अब आप यहां से जाइए। रश्मि ने जल्दी ही आकाश को बाहर का रास्ता दिखाया था और उसके ठीक मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। वहीं आकाश का दिल रश्मि के इस तरह के बर्ताव से कतरा कतरा हो गया था, लेकिन वो यही तो चाहता था कि रश्मि उसे प्यार न करे बल्कि रश्मि उसे सिर्फ नफरत करे। अब आकाश अपने टूटे दिल के साथ जल्दी ही अपने कमरे में जा बैठा था। ध्रुव और आहान दोनों एक साथ इस वक्त एक कमरे में मौजूद थे और दोनों का ही आज मुंह लटका हुआ था।